समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज से पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए भारत का 84 खिलाड़ियों का दल पहले ही रवाना हो चुका है और समस्त देशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। पैरालंपिक के बारे में हम कार्यक्रम में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही देश दुनिया की भी जानकारी आपको देंगे और आर्थिक जगत की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा उन खास हस्तियों को हम याद करेंगे जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। आज कार्यक्रम में मेरे साथ हैं शिफाली।
हेलो सर फिरोजी एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। और जैसा कि सर फिरोजी ने कहा, आज शुरुआत होगी पेरिस पैरालंपिक्स की, तो उसी से रिलेटेड है आप सबके लिए ये कोट विच सेज, नो मैटर व्हाट यू फेस इन लाइफ, इट इज पॉसिबल टू अचीव ग्रेट थिंग्स। और पैरालंपिक्स इसी का एक एग्जाम्पल है, सो वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। एंड जैसा कि सर फिरोजी ने कहा कि हम आगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे, वेयर वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्स्यूल, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना कम्प्लीट्स 10 ईयर्स, मोर देन 53 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन्ड सो फार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों को सम्मान देने में जनधन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नेशनल टास्क फोर्स होल्ड मीटिंग विद स्टेट चीफ सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस टू डिस्कस मेजर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी।
IMD इश्यूज रेड अलर्ट एंड फ्लैश फ्लड वार्निंग फॉर सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन फुल स्विंग।
और पैरालंपिक खेल 2024 आज रात पेरिस में शुरू, 84 भारतीय एथलीट भाग लेंगे।
And now, dear listeners, I am pretty excited because it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we have something special to talk about, that is the Paralympics Games Well, that music has definitely pumped me up and given me the goosebumps. The Paralympics Games 2024 is here. Game is not over. After the fervor of the Olympic Games that thrilled us at the beginning of August, it's time for the Paralympic Games to celebrate the athletes' exploits once again.
आज यानी 28 अगस्त से पैरालंपिक की शुरुआत हो रही है। ओलंपिक 2024 की मेजबानी के बाद पेरिस ने पैरालंपिक की भी मेजबानी की है। आज इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है और गूगल जिस तरह हर बड़े दिन या बड़ी हस्ती के लिए एक डूडल बनाता है, उसी तरह अगर आज आप गूगल सर्च इंजन के होम पेज को देखेंगे तो आपको वहां एक आकर्षक जिफ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 8 सितंबर को खत्म होगा।
And mark the dates on your calendar, dear listeners. The Paralympics Games 2024 will officially get underway in Paris today and will go on till 8 September. This is for the first time that France will stage a summer Paralympics. The country previously hosted the Winter Paralympics in 1992 in Tignes and Albertville. The Paris Paralympics 2024 opening ceremony will start at 11:30 PM IST today. And Sarfirozi, ye time thoda sa late hai for all the Indian nationals, but I think our excitement will win over it. Aur hum log raat ko 11:30 baje TV khol ke baithe honge, right?
Ji, bilkul. Jin viewers ke man mein utsaah hoga, wo ek pal ke liye bhi nahi hatne wale TV ke samne.
Bilkul. Aur ab to sports lovers ki sankhya badhti ja rahi hai, mere khayal se. So, as mentioned earlier also, a total of 84 Indian para-athletes will compete in this edition of the Games. It is India's largest contingent in Paralympic history, and that's a big fact, I would say. India will compete in 12 of the 22 sports scheduled at Paris 2024.
भारतीय दल के 100 से अधिक सदस्य आज पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे, जिनमें 52 खिलाड़ी शामिल हैं, और इतिहास में ये पहली बार है कि पैरालंपिक की इनॉग्रल सेरेमनी स्टेडियम से बाहर खुले में होगी। पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह पेरिस के चैम्स एलिसीस और प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड में आयोजित होगा। परेड में भारत के 106 सदस्य हिस्सा लेंगे, जिनमें 52 खिलाड़ी और 54 अधिकारी हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक होंगे।
And now, Sarfirozi, let's take our listeners back to the history of this game. Neurologist Sir Ludwig Guttmann inspired the Paralympic Games, which started on a smaller scale. After World War II, he worked at Stoke Mandeville Hospital with spinal injury patients, encouraging them to use sports for rehabilitation. In 1948, he organized a competition with other hospitals during the London Olympics, and the idea spread to other UK spinal injury units. By 1960, 400 wheelchair athletes from 23 countries competed in Rome across 8 sports and 57 medal events. Known as the 9th Annual International Stoke Mandeville Games, it is now recognized as the first Paralympics. Paris 2024 will mark the 17th edition. So, Sarfirozi, it's very interesting to look at the history because sports ka kafi importance hota hai apne aap ko healthy rakhne mein, and iski history bhi. पॉइंट
जी, और एक तरह से आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं शेप देने में भी स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है।
बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन दैट। एंड नाउ एज फॉर द पैरालंपिक कंटिंजेंट, द होप्स आर अप देयर आफ्टर अ रिकॉर्ड 19 मेडल्स इन टोक्यो। This time in Paris, Indians have a shot at as many as 55 medals, with 84 para sports persons all determined to bring glory.
जी, शेफाली ने आपको पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक की जानकारी दी, और इस साल के पैरालंपिक खेलों की जानकारी देने के साथ साथ हम पिछले पैरालंपिक की यादें भी ताजा करते चल रहे हैं। पिछली बार हुए पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से 54 एथलीट का दल गया था, जो देश के नाम कुल 19 पदक घर लाए थे। इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। पिछले पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले 5 में से 4 पैरा एथलीट इस बार भी हिस्सा ले रहे हैं।
एंड कमिंग टू दिस सीजन नाउ, कृष्ण नागर विल बी लुकिंग टू डिफेंड हिज मेन्स सिंगल्स टाइटल इन पैरा बैडमिंटन, व्हाइल अवनी लेखरा एंड मनीष नारवाल आर सेट टू टेक एम इन पैरा शूटिंग। पैरा आर्चरी, पैरा साइकिलिंग, पैरा ताइक्वांडो, पैरा स्विमिंग एंड पैरा टेबल टेनिस आर अदर इवेंट्स वेयर इंडियंस विल बी सीन इन एक्शन फ्रॉम टुमारो। पैरा एथलेटिक्स विल किक ऑफ फ्रॉम फ्राइडे, वेयर 38 इंडियन एथलीट्स विल पार्टिसिपेट। द स्पॉटलाइट विल बी ऑन जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल, हु इज द टोक्यो 2020 गोल्ड मेडलिस्ट इन द F64 कैटेगरी एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भावीना पटेल इन वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी। भावीना, हु इज इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक्स मेडलिस्ट इन टेबल टेनिस, विल ऑल्सो प्ले द वुमेन्स डबल्स इवेंट विथ सोनल बेन पटेल।
और शूटिंग में नजरें फिर से स्टार शूटर अवनी लेखरा और मनीष नरवाल पर रहेंगी। दोनों ने ही पिछले गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। अवनी ने पिछले गेम्स में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता था। शेफाली, उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से ओलंपिक में जो कारनामा हमारी शूटर मनु भाकर ने किया था वैसा ही कुछ अवनी लेखरा भी करें।
डेफिनेटली डेफिनेटली।
और वहीं मनीष नरवाल मेन्स पिस्टल शूटिंग में दावा ठोकेंगे। वो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में हिस्सा लेंगे। पिछले गेम्स में उन्होंने मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और एक और खिलाड़ी जिससे देश को बहुत उम्मीदें हैं, जिनका आपने जिक्र भी किया, वो है जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल, जिन्होंने 3 साल पहले टोक्यो गेम्स में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के कुछ ही दिनों बाद गोल्ड जीतकर तहलका मचा दिया था। और शेफाली, भारत के 2 खिलाड़ियों के 2 गोल्ड मेडल जीतने के कारण जेवलिन थ्रो को एक अलग पहचान मिली। उससे पहले शायद हम इतना फोकस नहीं करते थे जेवलिन थ्रो पर। जी, एक बार फिर अंतिल F64 कैटेगरी में उतरेंगे। और एक और खास बात यह है कि इस इवेंट में जितने भी जेवलिन थ्रोअर कॉम्पीट करने वाले हैं
जी,
उनमें सुमित अंतिल का इस सीजन का बेस्ट थ्रो रहेगा। इन्होंने 69.50 की दूरी पर अपना भाला फेंका था। इनके अलावा संदीप और संदीप सरगार भी इस इवेंट में दावेदारी पेश करेंगे। और शेफाली, एक खिलाड़ी जिसका हमें जिक्र करना चाहिए
जी,
इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें,
ओके,
ये है शीतल देवी। ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं और इनका ये पहला पैरालंपिक रहेगा। 17 साल की ये फीमेल शूटर हैं जो बिना बाहों के शूट करती हैं। ये कुर्सी पर बैठकर अपने पैर से निशाना साधती हैं और शूट करती हैं। और यही कारनामा करते हुए शेफाली, इन्होंने 2022 के एशियन गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था।
दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। आई थिंक ऐसे ही लोगों के लिए ये कोट बना है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग।
बिल्कुल। और शेफाली, जब हम इस तरह के पैरा एथलीट्स को आम लोगों की तरह मुकाबला करते हुए देखते हैं
जी,
तो सोसाइटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हम भेज रहे हैं कि हमारे आपके हौसले से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने पहले जिक्र भी किया था
जी,
कि अगर आप ठान लें तो आपके अंदर मौजूद कोई भी कमी आपको अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती।
बिल्कुल। सो वील ऑल यूज दिस पैरालंपिक्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस एंड हेड इन दैट वे। एंड देर आर अ फ्यू मोर एथलीट्स दैट वी कैन लुक फॉर स्टार्टिंग September 4। परमजीत कुमार, अशोक, सकीना खातून एंड कस्तूरी राजामणि विल कंटेस्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट पोडियम इन पैरा पावर लिफ्टिंग सिंस एथेंस 2004। Indian judokas Kapil Parmar and Kokila will be making their Paralympics debut on September 5. The 3-member para canoe team are the last set of Indian athletes to take the Paris 2024 stage when they begin racing on September 6. The Paris 2024 Paralympics will conclude on September 9 with the closing ceremony.
Ji, hum ummeed karte hain jis tarah hamare Paralympic khiladiyon ne Asiai khelon aur Tokyo Paralympic mein Bharat ka jhanda gaada tha, usi tarah पेरिस पैरालंपिक में भी एक बार फिर तिरंगा लहराए और हमारे खिलाड़ी पिछली बार से ज्यादा मेडल देश के नाम लाएं। और अब समय है अपनी क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक बदलाव की शुरुआत की है। इस खास योजना से आबादी देह क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का यानी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मानना है कि स्वामित्व योजना राज्य के ग्रामीण परिदृश्य को बदलकर हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की का अवसर प्रदान करेगी। राजस्व विभाग की अगुवाई में शुरू हुई इस योजना के पहले चरण में 190 गांव के करीब 4,500 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए बकायदा ड्रोन से मार्किंग की गई है और अब तक 15,196 गांव में से 13,599 आबादी देह गांव में ड्रोन मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला हमीरपुर सहित कुल 6,314 गांव में पहले स्तर पर 16,588 नक्शे और दूसरे स्तर के 774 गांव में 1,482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांव के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर देश का पहला जिला बन गया है जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। संपत्ति कार्ड न केवल कानूनी दस्तावेज है बल्कि ग्रामीणों को लंबे समय से आ रही मुश्किलों और मुद्दों का समाधान है। इससे आम लोगों को राजस्व कार्यालयों में बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पष्ट और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्वामित्व प्रदान करने के योजना भूमि धारकों को ऋण लेने और भूमि में निवेश करने के अवसर प्रदान करेगी। राज्य सरकार की ये पहल प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जमीन के मालिकाना हक और प्रबंधन की जटिलताओं को संज्ञान में लेकर शुरू की गई स्वामित्व योजना प्रदेश के अधिक कुशल पारदर्शी और भू प्रशासन प्रणाली की नींव रख रही है जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ और राज्य की ग्रामीण आबादी के लिए प्रगतिशील आयाम स्थापित होंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
And Sir Firozi, next up we have a story about making best out of waste. So the Bengaluru Metropolitan Transport Corporation that runs public bus services in the state capital in Karnataka had come up with an innovative idea to reuse the buses scrapped by them. The engineers in the corporation have redesigned the scrapped bus into a mobile canteen that was much needed for the staff at the depot. More from our correspondent.
It is said that necessity is the mother of all inventions. Something similar happened at the Bengaluru Metropolitan Transport Corporation depot in Bengaluru. When the problem arose to fulfill the demand for canteen for the depot staff, the engineers at the corporation came up with the idea of converting the scrapped bus into mobile canteen. The idea was supported by the transport minister and senior officials, resulting which the Leyland bus that was scrapped was taken up for conversion into mobile canteen. The Dasanapura Central Workshop technical staff, supported by others, started working on the idea and conceived a design. The sitting and table arrangements, exhaust and electric fans, wash basin, drinking water supply system, ventilation, lighting system with glass window over roof for natural lighting was planned. After several trial and error methods and refabrication, today the bus has turned into a comfortable mobile canteen. Named as Come and Eat Together, the mobile canteen is standing at the newly constructed depot and bus station in Dasanapura in Bengaluru. It stands testimony to the adaptability skills of human beings that can create wealth from waste. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
In another uplifting news, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in collaboration with the Ministry of Women and Child Development, today organized an orientation session on the empowering adolescent girls and women in New Delhi.
Adolescent girls and women still face challenges to get proper employment opportunities. To address these hurdles, the Ministries of Women and Child Development, Skill Development and Entrepreneurship have collaborated to organize a 3-month training program to assist women in developing skills. Under the program, financial assistance will be provided to women. Talking to Akashwani News, Secretary of Skill Development and Entrepreneurship, Atul Kumar Tiwari, expressed optimism that the program will help girls tackle these problems.
Ministry of Skill Development or Ministry of Women and Child Development, we have signed an MOU to work closely together so that we lead to joint effort in the skilling of adolescent girls and women. And today we had an orientation program of capacity building of the 27 districts. These PDPOs have come, these are around 19 states. Talking to them and telling them about what we are trying to do, it will help us finalize our way ahead.
This initiative would increase female participation in the workforce, enhance awareness and foster self-sufficiency. For Parikrama, Priya, Akashwani News, Delhi.
Union Minister of State for Commerce and Industry, Jitin Prasad, today inaugurated the 10th International Pharmaceutical Exhibition, IFEX, in India Expo Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. In the 3-day event, more than 400 major Indian pharma companies are showcasing their pharmaceutical products and technologies.
The IPEX also consists of seminars and workshops on pharma export related technical and commercial topics, and more than 400 foreign buyers from across the world are expected to attend the expo. The event witnesses the presence of manufacturers, distributors, importers, regulators and government procurement agencies from the pharma sector. In his inaugural address, Mr. Prasad stressed that the country's pharmaceutical sector will touch $113 billion mark by 2030, which is currently at around $55 billion. Talking to Akashvani News, one of the exhibitors, Shubham, said that the response in IFEX is quite good and they participate every year.
We are participating in IFEX 2024 and yeah, it was a very good experience. Every time, every year we are participating in this and most of the export clients came here and yeah, we are getting very good response.
Visitor Sandri from Cameroon told Akashvani News that her experience is extraordinary and she is looking for manufacturers.
I was there last year at the same for us because we are looking for some manufacturer to be a representative in Cameroon.
Abhishek Kapil for Parikarma.
और अब आपको लेकर चल रहे हैं आजादी के सफर पर.
In today's episode, we bring you the story of a great freedom fighter and social reformer from Gujarat, Javed Chand Meghani. Javed Chand Meghani was born on this day in 1896 in Chotila town of Surendranagar district in Gujarat. Inclined towards literature from a young age, he wrote his very first poem when he was just 12. He went on to pursue degrees in both Sanskrit and English literature. In 1930, the noted poet and writer was sentenced to 2 years in jail for writing the book Sindhzor that contained songs to inspire the youth participating in the struggle for independence from the British Raj.
It was during this time that he wrote Kavya Tripoti, based on Gandhiji's visit to London for the Round Table Conference. He was conferred the title of Rashtra Shayar, or a national poet, by Mahatma Gandhi. Sardar Vallabhbhai Patel praised him and said he was a voice full of courage. One of his most famous songs, Mor Bani Thangat Kare, My Mind Dances Like a Peacock, was used in the 2013 Hindi film Goliyo Ki Ras Leela Ram Leela.
Meghani authored more than 100 books. His first book was a translation work of Rabindranath Tagore's ballad Kotha O Kahini, titled Kurbani Niye Kotha, Stories of Martyrdom, which was first published in 1922. He was also the editor of Phoolchhab newspaper of Janmabhoomi Group, which is being published till date from Rajkot.
It was also on this day in 1928 that the Nehru Committee Report, or the Nehru Report, was submitted at the Lucknow session of the All Party Conference. A committee headed by Motilal Nehru, with Jawaharlal Nehru as the secretary, was set up to draft a constitution. When the Simon Commission came to India in 1928, it was vehemently opposed by Indians, especially by the Indian National Congress, for the lack of a single Indian in the commission. So, the Secretary of the State for India, Lord Birkenhead, challenged the Indian leaders to draft a constitution for India, implicitly implying that Indians were not capable of finding a common path and drafting a constitution.
The political leaders accepted this challenge and an all-party conference was held and a committee report appointed with the task of drafting a constitution. The Nehru Report had the primary motive of assigning dominion status to India within the British Commonwealth. Some of the main recommendations of the report were the formation of a federal form of government with residuary powers in the hands of centre, enshrinement of 19 fundamental rights, including the right to vote for men and women above 21 years of age, equal rights for men and women as citizens, no state religion, and a proposal for the creation of a Supreme Court. In fact, the Nehru Report was the first major attempt by Indians to draft a constitution of India.
Today is the death anniversary of the great freedom fighter Chengjapao Dongel from Manipur, popularly known as Chengjapao Kuki. He was one of the Kuki leaders who questioned the British authority in the Kuki uprising of 1917-1919. During the Second World War, he organized Kukis against colonial and feudal authority of the British under the banner of the Indian National Army. He was the chief of Assen, the city of Dongal clan. During the reign of Chengjapao, Alphen's glory spread far and wide, and it became the most powerful city. The British government saw the rise of Cheng Japao Dongel and the revolt of the Kukis as a serious threat to the eastern part of India. Cheng Japao Dongel was arrested and sent to jail for 4 years.
After India gained its independence, the government, in recognition of the bravery shown by the Kuki heroes and in memory of the war of independence they had fought, gave a grant for the construction of Kuki Inn, which today stands in the heart of the Imphal town. Cheng Japao Dongel's name will continue to be remembered with honor and reverence in the history of India's freedom struggle. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in next episode tomorrow.
अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और लेते हैं वहां की जानकारी। पीआर श्रीजेश के संन्यास के बाद आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कृष्ण बहादुर पाठक को हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का मुख्य गोलकीपर बनाया गया है। भारत के अलावा टूर्नामेंट में कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और मेजबान चीन भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट 8 से 17 सितंबर तक खेला जाएगा।
In business news today, India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended on a positive note in a volatile trading session amid mixed global cues. Nifty 50 reached a new all-time high during the session, although profit booking in the last session dragged the index lower to settle at 25,052 with gains of 35 points. The Sensex closed the session 74 points higher at 81,785. In the Indian bullion market at 4:10 PM, the 24-carat gold was trading at 72,030 rupees for 10 grams and silver 999 fine was trading at 84,980 per 1 kilogram.
और अब बात उन हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। तो शेफाली कहां से शुरू कर रहे हैं?
जी, टुडे वी विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुमित्रा देवी, एन इंडियन एक्ट्रेस हु इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क इन हिंदी एज वेल एज बंगाली सिनेमा ड्यूरिंग द 1940s एंड 50s। शी इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हर रोल इन द 1952 हिंदी फिल्म ममता। हर अदर इम्पोर्टेंट रोल्स वर इन फिल्म्स सच एज दीवाना, घुंघरू मयूरपंख, चोर बाजार एंड जागते रहो एंड कैलाशपति। सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कैलाशपति।
आज जयंती है उस्ताद विलायत खां की। ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे। इन्होंने 1958 में निर्मित सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म जल सागर समेत कई फिल्मों में भी संगीत दिया। आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
And dear listeners, today is the birth anniversary of Raghupati Sahai, who's most popularly known by his pen name Firag Gorakhpuri, who was an Indian writer, critic and one of the most noted contemporary Urdu poets from India. Firag had shown early signs of excellence in Urdu poetry and had always shown attraction towards literature. He joined Allahabad University as a lecturer in English literature. It was there that he wrote most of his Urdu poetry, including his magnum opus Gule Nagma, which earned him the highest literary award of India, the Gyanpeeth Award, and also the 1960 Sahitya Akademi Award in Urdu. And let's listen to some of his poem in his own voice.
Tanhai mein kise bulaein, ae dost, tanhai mein kise bulaein, ae dost, तुम दूर हो, किसके पास जाएं, आए दोस्त, इस दौलत से वक्त से तो दम घुटता है।
दौलत वक्त से दम घुटता है,
ये नकदे सब कहां भुनाएं।
आज कैप्टन अनुज नैयर जी की जयंती है। ये भारतीय सैन्य अधिकारी थे। ये 17,000 रेजिमेंट के भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्हें करगिल युद्ध में अभियान के दौरान युद्ध में अपनी वीरता के लिए मरणोपरांत 1999 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज ही जयंती है राजेंद्र यादव की। ये हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध पत्रिका हंस के संपादक और लोकप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी मुख्य रचनाओं में सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, खेल खिलौने, आवाज तेरी है और प्रेमचंद की विरासत आदि शामिल हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शेफाली को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।